Non devono sapere auzu billahi min shaitani bismillahir rahmanir rahim ye sawalat ka silsila isme ek sawal hai ki kisi murid ko kaise pata chalega ki uske shaykh ki taraf se use qubool kar liya gaya hai aur uski tabiyat تربیت کا آغاز ہو چکا ہے. یہ سوالات ذہن میں صرف ایک ہی صورت میں آتے ہیں انسان کی کہ اگر اس کے کانسیپٹس کلیئر نہ ہوں کہ یہ تصوف روحانیت علم لدونی طریقت یہ سب ہے کیا. یہاں بڑا فریکوینٹلی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ جو آدمی اس راہ پہ چلتا ہے جسے تصوف حاصل ہوتا ہے یا روحانیت حاصل ہو جاتی ہے, طریقت کی راہ پکڑتا ہے, تو اس کے اندر کوئی غیر مرئی اور کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اس کا تو بیسک مقصد صرف اتنا سا ہے کہ انسان اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے لگے, جو رب تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کو حت الامکان اس پر عمل کر لے, سنت کو فالو کر لے, سیرت کو خاص طور پر فالو کرنا شروع کر دے. جو سیرت مبارکہ ہے اس پر عمل کرنے میں خاصے دشوار مقامات بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ سیرت مبارکہ کا اگر بغور مطالعہ کریں تو وہاں سوائے دوسروں کے لیے ایثار اور قربانی کی اور کچھ ہے نہیں. تو انسان کے لیے ایثار اور قربانی کرنا ہمیشہ سے دشوار رہا ہے. تو جب ہم کسی صاحب کو اپنا گائیڈ پکڑ لیتے ہیں, جسے عرف عام میں آپ مرشد کہتے ہیں, تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے آپ کو اگر اپنی شاگردی میں قبول کر لیا تو پتہ چلا کہ نیکسٹ ڈے سے آپ کے یہاں کچھ آپ صاحب امر ہو گئے کہ جو منہ سے نکالا وہ پورا ہو گیا, جو چاہا وہ حاصل کر لیا. بالکل ایسا نہیں ہوتا, بلکہ انسان کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کی نرمی آنے لگتی ہے. تو پریکٹیکلی وہ دوسروں کے لیے سخت نہیں رہتا, عملی طور پر نرم ہو جاتا ہے. پھر وہ لینا نہیں جانتا, صرف دینے لگتا ہے. لوگوں کے جبر کو بڑی ہنسی خوشی برداشت کر لیتا ہے, لوگوں کی زیادتیوں کو ہنسی خوشی برداشت کر لیتا ہے. یہ تبدیلیاں ضرور محسوس ہوتی ہیں, لیکن ان کو محسوس کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس چیز پر نظر رکھیں کہ جب ہم آئے تھے یہاں, جب ان صاحب کو ہم نے اپنا گائیڈ پکڑا, تو ہمارا رویہ کیا تھا اور آج ہمارے رویے کیا ہیں. تو جب یہ آپ इस तरह से मवाजना करेंगे तो वहां फर्क महसूस होगा। वही एक सबूत है कि आपकी तरबियत हो रही है। लेकिन यहां भी एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमारे जो गाइड हैं, हमारे मुर्शिद जो हैं, वो सिर्फ हमें बता सकते हैं हमें रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन हमारी जगह उस रास्ते पर वो चल नहीं सकते। चलना खुद हमें ही है। तो अगर मेरे मुर्शिद साहब मुझे ये समझाते हैं कि कोई आदमी तुम्हें गाली देता है तो उसको मुस्कुरा के सलाम कर दो जवाब में। अब ये इख्तियार मेरा है अपनी जात पर कि मैं अपने मुर्शिद साहब की इस बात पर अमल करता हूं या मेरी अना ज्यादा स्ट्रांग है और ऐसा अगर कोई वक्त आए तो मुर्शिद साहब की बात को मैं पसे पुश डाल देता हूं और उस गाली का जवाब गाली से या थप्पड़ से दे देता हूं। उसमें मुर्शिद साहब का तो कोई कसूर नहीं होगा। ये तो सब मुझे ही करना है, वो तो सर बता सकते हैं। मुर्शिद साहब ये बता सकते हैं कि अगर तुम्हें ये अंदेशा हो जाए कि बाप की छोड़ी हुई जायदाद में तुम्हारा हिस्सा तुम्हें नहीं मिल रहा और अगर तुम डिमांड करो तो तुम्हारे बहन भाई तुमसे नाराज हो जाएंगे तो तुम अल्लाह के नाम पर दिल में ये सोच लो कि मैं इस फसाद को बचाना चाहता हूं, ये फसाद न डले तो बेहतर है, तो मैं अपना हिस्सा छोड़ देता हूं। अब वो मुझे बता सकते हैं लेकिन ये काम मुझे करना है। तो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि अरस्तु बहुत इल्म वाला था, साहिबे इल्म दानिश था, तो बाज़कात होता यह था कि इल्म के किसी नुक्ते पर अगर बहस शुरू हो गई तो दो दो तीन तीन दिन वो भूल जाता था मुझे घर भी जाना है। तो बेगम साहबा से धुनाई होती रहती थी उसकी। तो एक दिन ऐसे ही किसी मौके पर वो दो रोज के बाद जब घर गए तो एक शागिर्द साथ था, तो बेगम फर्श धो रही थी उस वक्त, तो उन्होंने देखा कि ये दो तीन दिन के बाद अरस्तु साहब तशरीफ ले आए हैं, तो बिगड़ गई तो बड़ी बुरी तरह से झाड़ झपट कर दी। तो अरस्तु साहब सामने से मुस्कुराते रहे। मुस्कुराने पर बेगम को और ज्यादा गुस्सा आ गया, तो पानी की वो बाल्टी जिससे फर्श धो रही थी उन्होंने उठा के अरस्तु पे उलट दी। तो शागिर्द ने अरस्तु से पूछा कि हजरत ये क्या? कहने लगे जो बादल इतने जोर के गरजे थे उन्हें बरसना भी था। तो जब ये रवैया अख्तियार करता है, मुर्शिद तो बता ही सकते हैं कि ये घर में आप क्या रवैया रख लें, लेकिन वो मुझसे करवा नहीं सकते। इसके लिए अंग्रेजी में बेहतरीन मुहावरा है कि यू कैन टेक द हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। तो हमें नहीं पता चल सकता किसी तौर भी तबक्ते के हम जहन से ये निकाल दें कि हम मुर्शिद साहब के पास गए हैं, अब कोई मुश्किल नहीं आएगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब किसी काम में मुझे नाकामी नहीं होगी। कभी अगर हम ये देखें कि ये जो हम तवक्को लगाए बैठे हैं कि मैं मुर्शिद साहब के पास गया तो किसी मामले में नाकामी हो नहीं सकती। कोई मुश्किल पेश आ गई, दुआ कराई, उस मुश्किल से निकल गए। तो अगर ऐसी ही जिंदगी हमारी हो जाए तो क्या ये गैर फितरी जिंदगी नहीं होगी? क्योंकि जिंदगी तो फितरी जिंदगी वही है जैसी रब ने बनाई है, और रब ने हर चीज के जोड़े बनाए हैं। अगर खुशहाली है तो तंगदस्ती भी है, सेहत है तो बीमारी भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, आसानी है तो मुश्किल भी है। ये दोनों चीजें जब यकसा होके चलती हैं जिंदगी में, कामयाबी है तो नाकामी है, तो वो फितरी जिंदगी है। तो हमें अपनी जिंदगी में ये तमाम चीजें पेश आएंगी। खुद औलिया कराम जिनके पास हम जाके बैठ के ये समझते हैं कि हर मामले में हमें कामयाबी हो जाएगी, खुद उनकी जिंदगी को अगर आप देखें तो बड़ी मुश्किल जिंदगी होती है। आप उनके करीब जाके उनको गहराई से देखें, बहुत मुश्किल जिंदगी होती है। तो कमाल की बात यह है कि एक आदमी जो इतनी मुश्किल जिंदगी गुजार रहा है, उसके पास जाके हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी में सब आसानियां ही आसानियां होंगी। रब ने एक असूल बनाया है कि ये आलमुल असबाब है, यहां जद्दोजहद बुनियादी शर्त है। हम ये कहते हैं कि दुआ करा के काम चला लेंगे, कहीं जद्दोजहद की जरूरत नहीं है। मैं सारा साल पढ़ता नहीं, एग्जाम से पहले जाके दुआ करा के समझता हूं कि मैं मेरी ए स्टार आ जाएंगे। सब गैर फितरी चीज है, इसीलिए हमें मायूसी होती। हम में से अक्सर लोग कभी एक साहब के पास जा रहे होते हैं दो चार साल के बाद, वो तो कुछ भी नहीं है, मैंने दुआ कराई थी कि मुझे नौकरी मिल जाए, वो नौकरी नहीं मिली, तो क्या फायदा है। दूसरे के पास चले गए, फिर दो चार साल के बाद वहां से छोड़ के एक और के पास चले गए। फॉल्ट उन साहब का नहीं है जिनके पास जाके मैं बैठना शुरू हुआ, फॉल्ट मेरे अपने कॉन्सेप्ट में था कि मैं एक गैर फितरी जिंदगी मांग रहा हूं। तो ये तरीकत की राह पर जो तरबियत है आप हमारी, वो इस चीज से नुमाया होगी कि हमारी जिंदगी के रवैये क्या सुन्नत के मुताबिक होना शुरू हो गए, क्या सीरत को हमने फॉलो करना शुरू कर दिया, क्या कुरान में बताए हुए असूलों पर अमल हमने शुरू किया। वहां से पता चल जाएगा कि हमारी तरबियत हो रही है या नहीं हो रही। तो तरबियत को इससे मैयर मत कीजिए कि मुझे गैर फितरी जिंदगी हासिल हुई या नहीं हुई। इनका अगला सवाल ये है कि कुछ मुरीदों को मुर्शिद साहब ना कोई खास पढ़ाई देते हैं, ना किसी मजार पर हाजिरी की ताकीद करते हैं, ना कोई नसीहत करते हैं, बल्कि ऐसे मुरीदों के हिस्से की मेहनत मुर्शिद साहब खुद कर रहे होते हैं। ये वो बात है जो मैंने शायद लास्ट संडे या उससे प्रीवियस संडे अर्ज की थी कि बचपन से हम सुनते आए थे कि कोशिश कीजिए कि कोई फकीर आपसे चिढ़ ना जाए किसी बात पर। बल्कि कोशिश ये करें कि आप फकीर के दिल में उतर जाएं, और फकीर के दिल में उतरने का रास्ता जो हमें बचपन में बताया था, वो यार लोगों ने ये समझाया था कि तमीज वाला इंसान, वेल मैनर्ड, वेल एटिकेटेड, डिसेंट, पोलाइट इंसान हर एक को अच्छा लगता है। तो अगर किसी फकीर से मिलते हो और तुम बादब रहते हो, एटिकेट्स एंड मैनर्स को फॉलो करते हो, ये ख्याल रखते हो कि उसके मसरूफियत के औकात क्या हैं, उसके आराम के औकात क्या हैं, तो उसमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, गुफ्तगू करते हो तो अल्फाज के बारे में मोहतात रहते हो, तो इन खूबियों का मालिक तो हर एक के दिल में उतर जाएगा, तो फकीर के भी दिल में उतरेगा। तो जब फकीर के दिल में उतरते हो, वो तुमसे प्यार करने लगता है। असल में उसका प्यार ही सब कुछ है, कि जहां उसने आपको चक्की पीसने पर लगाना है, क्योंकि वो चक्की पीस पीस के इस मकाम पे आया है, उसको चक्की पीसने की प्रैक्टिस है। तो यूं वो आपके हिस्से की चक्की पीस देगा। सिलसिला चिश्तिया साबरिया में एक चीज ये है कि जो लोग इस सिलसिले में आए, काफी आगे जाते हैं, तो वो एक चीज एक्सपीरियंस करते हैं कि सोते में कभी आंख खुले तो वो कुछ पढ़ रहे होते हैं। अब वो चीजें पढ़ रहे होते हैं जो उन्होंने जागते हुए कभी नहीं पढ़ी ना सुनी है, लेकिन वो पढ़ रहे होते हैं। वो मुर्शिद है जो पढ़वा रहा है सोते में आपको, लेकिन ये उसी सूरत में होता है अगर मुर्शिद के दिल में उतरे हो, उतरा हुआ आदमी है। तो ये जो, और वैसे तो ये कहा जाता है और ये करते भी हैं, ये जो अल्लाह वाले हैं, अगर मैं गया वहां और जाकर मैंने किसी फकीर से ये कहा कि हजरत ये काम कर दीजिए, और उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि इस काम में या तो बहुत देर लगेगी या ये होगा नहीं, वो ये कहकर तो इंसान को किसी को मायूस नहीं करते, क्योंकि वो गुनाह है किसी को मायूस करना। तो ये करेंगे कि मुझे चक्की पीसने पे लगा देंगे कि अच्छा ये काम हो जाएगा, तुम ऐसा करो, ये पढ़ा करो, तो ये काम हो जाएगा। पता चला कि मैं 6 महीने 8 महीने पढ़ता रहा, उसके बाद मैं भूल ही गया कि मुझे काम क्या था। तो उसके बजाय मैं उस जिक्र इलाही के जरिए से रब की तरफ रागिब हो गया, भूल गया काम को ही भूल गया। फिर तो वो चक्की पीसने पे लगा देते। लेकिन अगर आपकी तरबियत करना उनको मकसूद हो, फिर उनके रवैये और होते हैं कि वो आप पर तनकीद शुरू कर देते हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। वहां आदमी को ये समझ जाना चाहिए कि ये मुझसे नाराज नहीं हो रहे, बल्कि इनकी नीयत ये है कि मेरी तरबियत कर दें, मेरे अंदर जो ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, उन चीजों को ये निकाल रहे हैं तनकीद करके, पॉइंट आउट करके कि देखो ये गलत कर रहे हैं, इसको ठीक कर लें। तो इस पे नजर रखनी चाहिए। इनका अगला सवाल ये है कि क्या ये हकीकत है कि मुर्शिद कुछ मरीदों को अपने तसर्रुफ से एक दूसरे के साथ गैर महसूस अंदाज में कनेक्ट कर देते हैं ताकि कुछ मामलात में वो लाशौरी तौर पर एक दूसरे को सपोर्ट करें? ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है वैसी बिला वजह की। होता असल में ये है कि जब हम एक ही फकीर के हाथ पर बैत होते हैं तो हम एक खानदान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जैसे हमारे खानदान में हमारा मरकज पेरेंट्स होते हैं तो इस राह में वो मरकज हमारे मुर्शिद हो गए, तो हम सभी उनके पास जाते हैं, मुलाकात होती है। तो उस खानदान का हिस्सा होने की वजह से एक दूसरे की हम मदद शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के काम आने लगते हैं, एक दूसरे की दुख तकलीफ में शरीक होने लगते हैं। तो उससे हमें बाज़ का इस्तेमाल ये होता है कि शायद मुर्शिद साहब ने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया हमें कि हम एक दूसरे को, वो सिर्फ एक जगह बार बार इकट्ठे होने से, मुलाकात होने से वो एक कॉमरेडशिप पैदा हो जाती है इंसान में। अगला सवाल ये है कि ऐसा क्यों लगता है कि शायख अपने शागिर्दों के बहुत से जहनी नफ्सियाती हत्ता के अंदर ही अंदर पलने वाले जिस्मानी आवारज क्या बिन बताए और निशानदेही किए बगैर इलाज कर रहे होते हैं? जो इंसान मुर्शिद के मकाम पर पहुंच गया है, जैसे मैंने शायद लास्ट संडे अर्ज किया था कि इस राह में इंसान को ज़र्फ़ बहुत बड़ा करना पड़ता है। इंसान के अंदर चीजों को हजम कर जाने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, तो वो जिंदगी में मिलने वाले शॉक्स को बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब करता है इंसान। तो ये जो ज़र्फ़ पैदा होता है इंसान में, उस ज़र्फ़ की वजह से आपके मुर्शिद, आपके शेख उस हल्केपन की तरफ नहीं जाते कि अगर किसी के लिए वो कुछ कर रहे हैं तो उसको जुबान पर ले आए। तो जो जो चीज उनके इल्म में आती है अगर उसके लिए वो कुछ कर सकते हैं तो बड़ी खामोशी के साथ बगैर बताए कर देंगे, क्योंकि फकीर के नजदीक ये बहुत बड़ी कोताही होगी उसकी कि वो लोगों को ये एहसास होने दे कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं। उसके नजदीक ये कमजरफी है, छोटापन है। तो इसीलिए मुर्शिद कभी आपको पता ही नहीं चलने देते कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, जाहिर ही नहीं होने देते, बड़ी खामोशी से करते रहते हैं। अक्सर औकात ये होता है, खुद मैं भी इससे गुजरा हूं पर्सनली। अपने मुर्शिद साहब के पास मैं जाता था तो उन्हीं दिनों ऐसा इत्तफाक हो गया कि मैं कई साल रोजाना शाम को एक मखसूस टाइम पर हजरत पीर मक्की और दाता साहब जाता था, लेकिन मुर्शिद साहब से कभी बताया नहीं मैंने कि मैं डेली कहाँ जाता हूँ। तो वहां से हो के आके मुर्शिद साहब के पास बैठ के चाय वाय पी के और बातें उनकी सुन के घर चला आता था। तो मेरा ख्याल था कि मेरे मुर्शिद साहब को नहीं मालूम कि मैं वहां जाता हूं। तो एक दिन मैं जरा लेट हुआ, जरा क्या खासा लेट हुआ। तो जब मैं गया तो गर्मियां थी, तो शाहजाब बाहर गली में चारपाई बिछा के दूसरे पांच छह और लोग थे, वो लेटे हुए थे। तो मैं गया तो मैंने कहा सॉरी सर आज मैं लेट हुआ। क्या क्या? हाँ, जब आदमी एक पतले से बाजार में जाएगा जिसके दोनों तरफ शॉप्स हैं, सीढ़ियां चढ़ के वहां फातिहा खानी के लिए जब जाएगा तो लेट ही हो जाएगा। तो मुझे यूं पता चला कि मुर्शिद साहब के तो इल्म में है कि मैं वहां जाता हूं रोज। तो ये जो शेख है वो बड़े दिल गुर्दे का इंसान, वो तो आपको ये भी नहीं एहसास होने देगा कि उसको मालूम है कि वो अगर मैं गया और जाके बादशाही मस्जिद के करीब गाना वाना सुन के आ गया और मुर्शिद से कह दिया कि साहब मैं तो तहज्जुद पढ़ के आ रहा हूं। हां बड़ा अच्छा तहज्जुद पढ़ा करो, ये जवाब आएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि तुम क्यों झूठ बोलते हो, तो अभी तो तुम गाना सुन के आ रहे हो। तो ये बड़े लोग हैं तभी उस मकाम तक आते हैं। तो ये पता नहीं चलने देते कि अपने पास आने वालों के लिए कब किस वक्त क्या कर दिया खामोशी के साथ। इनका अगला सवाल दिलचस्प है कि कोई नालायक सहकार मुरीद अपनी वफात के बाद भी अपने मुर्शिद से ताल्लुक राबता और मुलाकात कायम रखने का मुतमन्नी हो तो वो इसके लिए क्या करे, क्या ये मुमकिन है? तो इसका भाई मुख्तसर सा जवाब ये है कि अगर वो राबता रखता है तो बदरू कहलाएगा, कि बदरू मरने के बाद भी जान नहीं छोड़ रही। ये कभी हो नहीं सकता कि कोई साहब किसी मर्द कामिल की शागिर्दी में चले जाए तो वो नालायक या सहकार रह जाए। ये तो हो सकता है कि बहुत से अगर शागिर्द हैं तो उन शागिर्दों में वो नालायक हो, लेकिन आम आदमी के निस्बत फिर भी वो लायक होगा। ये बजरू वाली बात तो मैं लाइटर नोट पर आपसे कह रहा था। तो अगला सवाल इन्होंने मेरी जात के बारे में कर दिया है कि ऐसा क्यों महसूस होता है कि आपकी बहुत सी रूहानी ड्यूटीज में से एक ये भी है कि खल्के खुदा को कुरान पाक की तलावत और तफहीम की तरफ रागिब करें। भाई पहली बात तो ये है कि गुनाहगार लोग रूहानी ड्यूटी पे क्या फाइज किए जाएंगे। मैं तो इस बात का इजहार अक्सर करता रहता हूं ताकि खल्के खुदा धोखा ना खाए कि मैं शायद दुनिया का सबसे गुनाहगार तरीन इंसान हूं। तो ये रूहानी ड्यूटी वगैरह तो नेक लोगों के काम है, इससे मेरा क्या ताल्लुक। लेकिन ये जो कुरान पाक की तलावत के लिए मैं हर एक से अर्ज करता हूं और उसके फहम की तरफ मैं जोर देता हूं, उसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि कुरान पाक की तलावत उसके एक नहीं कई एक फवायद हैं। रूहानी फायदे की तरफ तो बाद में आऊंगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब इंसान तलावत कलाम पाक कर रहा होता है तो बुजुर्गों ने उसकी तशबीह अल्लाह से कलाम करने से दी है, जो एक बहुत बड़ी सआदत है। दूसरी चीज, पढ़ने का सवाब बहुत है। तीसरा, जैसे मैंने کسی زمانے میں جناب حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کے خواب کا ذکر کیا تھا. تو کلام پاک رب تک جانے کا سب سے مختصر ترین راستہ ہے, قرب الہی کا سب سے مختصر ترین راستہ ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم تلاوت کلام پاک کو چھوڑ کر ہم راغب ہو گئے تسبیحات کی طرف, وظائف کی طرف. حالانکہ اگر صرف ہم ایک ہی کام کر لیں کہ ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر لیں, جتنی دیر بھی کر سکیں, یہ ضروری نہیں ہے 15 منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ کریں, جتنی دیر ہم کر سکتے ہیں اتنی دیر تلاوت کر لیں, بہت ہی افضل ہے. یہ اس سے بہت سے فوائد ہمیں حاصل ہو جائیں گے. پھر روح کی بالیدگی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ تلاوت کلام پاک کی جائے, لیکن تیز نہیں پڑھنا چاہیے کہ الفاظ ایک دوسرے میں گڑبڑ ہونے لگے, بلکہ ترتیل کے ساتھ, جیسے رب تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے کہ ایک ایک لفظ صاف سمجھ آئے. تو ہم اس طرح سے تلاوت کلام پاک کریں تو ایک بڑے مقام پر جا پہنچیں گے ہم. تو میں یوں ہر ایک کو قرآن پاک کی تلاوت کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ان کا اگلا سوال ہے کہ جس خاص وقت میں کسی ولی اللہ کو ولایت نصیب ہوتی ہے تو کیا وہ وقت باقی ساری زندگی اس ولی اللہ یا اس کے مریدوں کے لیے قبولیت کا وقت ہوتا ہے؟ نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. اصل میں اس راہ میں بہت سے چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں, سوتے میں پتہ ہی نہیں چلتا. تو ایک سوال ان کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش دن کے وقت ہوئی یا صبح صادق کے وقت؟ یہ صبح صادق فجر کے وقت. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا جو وقت ہے وہی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار خاص کے انعقاد کا ہے؟ بھائی, اس کا جواب تو کوئی آپ کو نیک انسان ہی دے پائے گا. اس کا جواب مجھ جیسا گناہگار آدمی کہاں سے دے گا آپ کو؟ کیا یہ درست ہے کہ اس خاص وقت میں کوئی انسان, خواہ وہ روئے زمین پر کہیں بھی ہو, اگر دعا کرے تو اس کی دعا اور حاجت پوری ہوتی ہے؟ رب تعالیٰ تو 24 گھنٹے دعائیں سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے, انہیں پوری بھی کرتا ہے. 3 باتیں ہیں دعا میں, کہ دعا کا سنا جانا, دعا کا قبول ہونا اور دعا کا پورا ہونا. تو رب تعالیٰ تو 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی اس کو پکارا جائے تو دعا سنتا بھی ہے, قبول بھی کرتا ہے اور پوری بھی کر دیتا ہے. تو میرا تو ایمان یہ ہے کہ رب کو پکارے جانے کا کوئی وقت نہیں ہے. نماز کا تو ہے, حاضری کا ٹائم تو ہے, وہ وقت مقرر ہے, لیکن رب کو پکارے جانے کا کوئی وقت نہیں. اس کو 24 گھنٹے جب جی چاہے پکارتا رہے بندہ, اس لیے کہ ہمارا رشتہ ہی رب کے ساتھ ایسا ہے آقا اور غلام کا رشتہ ہے, وہ آقا ہے. اور جس طرح آقا کے حقوق ہیں غلام پر, اسی طرح غلام کا حق پر ہے اپنے آقا پر, کہ جو ہی کسی مشکل میں آئے, تکلیف میں آئے, تو آقا سے عرض کرے کہ یہ میری تکلیف رفع کر دے. وہ حق ہے غلام کا, اس کو جب چاہے پکارے وہ جواب دیتا ہے. اگلا سوال ہے ان کا کہ ولی اللہ جب مشاہدے میں مصروف ہوتا ہے تو کیا یہ مشاہدہ اسے راہ حق سے ڈسٹریکٹ کرنے کا بھی سبب بن سکتا ہے؟ بالکل نہیں, اس لیے کہ ولی اللہ علم اس لیے ضروری ہے کہ اگر انسان صاحب علم ہے تو بھٹکتا نہیں ہے, وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا, اس لیے کہ چیزیں اس کے علم میں ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک انجینئر جو میکینیکل انجینئر ہے وہ مشین کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے, تو اگر مشین کے اندر کوئی ان یوزول آواز آتی ہے تو وہ اپنے علم کے ذریعے یہ جان لیتا ہے کہ اس کے یہاں فلاں پرزے میں یہ خرابی آ رہی ہے جس کی وجہ سے اس کی نوائز چینج ہو گئی ہے. اگر مشین چلتے چلتے رک جائے تو وہ اپنے علم کے ذریعے سے ہی جان لے گا کہ اس کے فلاں جگہ پر فالٹ آیا ہے, مشین کو ٹھیک کر دے گا, مشین رکنے نہیں پائے گی. تو اسی طرح جو مشاہدہ حق کرنے کے مقام پر پہنچ گیا یا کشف کے مقام پہ پہنچ گیا, وہ صاحب علم, مستند صاحب علم ہے, تبھی وہاں تک جا کے پہنچتا ہے وہ. تو اس کو کوئی چیز ڈسٹریکٹ نہیں کرتی. دوسری ایک بات یہ ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایسا شخص اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ میری سیر اور مشاہدہ حق میں پرائیورٹی کس کی ہے. جس مشاہدے کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس کو سیر کہتے ہیں. تو مشاہدہ حق جو ہے اس کو ہر چیز پر برتری حاصل ہے, اولین حیثیت رکھتا ہے وہ. مشاہدہ حق کو صاحب علم ہمیشہ ترجیح دے گا بنسبت اپنی سیر کے. تو یہاں ڈسٹریکشن کا کوئی سوال ہی نہیں. یہ ان کا ایک سوال کہ کچھ لوگ میڈیٹیشن کے دوران مختلف فرشتوں سے مخاطب ہو کر انہیں ہیلپ کے لیے کہتے ہیں, کیا ایسا کرنا مناسب اور مفید ہے؟ ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کسی ریبوٹ کو کوئی پروگرام, کمپیوٹر پروگرام فیڈ کر دیا جائے تو روبوٹ اس فیڈ کیے ہوئے پروگرام کے مطابق ہی عمل کرے گا. میں اس کو لاکھ بیٹھا ہوا روبوٹ کو کہتا رہوں کہ نہیں تم ایک گلاس پانی مجھے لا دو, وہ کچھ نہیں, चेंज नहीं आएगी, वो वही करता रहेगा जो जिसके लिए वो प्रोग्राम्ड है। फरिश्ते रब ताला के अहकामात के ताबे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अहकामात को कैरी आउट करते हैं, अपना माइंड अप्लाई नहीं करते। जैसे ये गार्ड ड्यूटी पर खड़ा हुआ फौजी, कायदे आजम के मजार है वहां गार्ड खड़ी होती है 23 मार्च को, 6 सितंबर को, 14 अगस्त को। तो जो गार्ड्स वहां खड़े होते हैं, एक जमाने में ये सूरत हाल बन गई थी कि लोग जो वहां विजिट के लिए आ रहे हैं, अब वो जो गार्ड है वहां वो एक स्टैचू की तरह खड़ा है। तो मेरे जैसे लोग जो वहां गए तो उन्होंने उनके बैजेस उतार लिए। अब वो तो ड्यूटी का पाबंद है कि वो खड़ा हिल नहीं सकता, तो आंखें भी नहीं घुमाता, वो सीधा देखता रहता। तो उसके बैजेस उतार लिए, वो खड़ा है इसलिए कि वो उसकी ड्यूटी है कि उसने वो गार्ड की ड्यूटी पर खड़ा है, हिलजुल नहीं सकता। तो फरिश्ते अपनी ड्यूटी करते हैं। मैं नहीं समझ पाता, मेरे जो कुछ थोड़ा बहुत मैं जानता हूं ये उससे कहीं बालतर बात लगती है कि कोई आदमी इस मकाम पर मेडिटेशन के जरिए चला जाए कि वो फरिश्तों को अहकामात जारी कर दे। फरिश्ते तो सर रब ताला के अहकामात के पाबंद हैं, दैट्स ऑल। वो सिर्फ उन्हीं अहकामात को कैरी आउट करते हैं, मेरे इल्म की हद तक, गलत हो सकता है इसलिए कि मैं कोई साहिब इल्म तो हूं नहीं, लेकिन बात असल यही है। वो मुक्कलात को अगर फरिश्ते समझ बैठे तो और बात है। इंशाअल्लाह ताला बाकी इनके सवालात नेक्स्ट संडे बशर्ते जिंदगी, सॉरी नेक्स्ट संडे 27th रमजान है तो उस दिन तो नहीं, उससे भी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।